نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بندوں پر ہر گھڑی نعمتوں کی بارش برستی رہتی ہے ہر وقت ان گنت نعمتیں ملتی رہتی ہیں ہمارا وجود بھی ایک نعمت ہے تو جو ساعتیں جو گھڑیاں گزر رہی ہیں ان گھڑیوں میں یہ وجود باقی رہتا ہے پھر ہمارے جسم میں انگنت قیمتی قیمتی نعمتیں ہیں وہ بھی ہر گھڑی باقی رہتی ہیں آنکھیں ہیں دو دو کان ہیں زبان ہے ناک ہے دانت ہیں دل ہے دماغ ہے اور پتہ نہیں کیا گیا ہے جسم کے اندر جسم کے ظاہر میں دو دو ہاتھ ہاتھ کی ایک ایک ہاتھ میں پانچ پانچ انگلیاں ہر ایک کو دو دو پیر دیے گئے ہیں ان پیروں کی اپنی بناوٹ دونوں گھٹنے اگر نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا وہاں جوائنٹ نہ ہوتا وہ جوڑ نہ ہوتا تو کیا ہوتا جن لوگوں کو گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے ان سے پوچھئے پھر ٹخنے دیے دو یہ جوڑ نہ ہوتا ہے انکلز کا پتہ نہیں کیا ہوتا یہ پانچ پانچ جو انگلیاں ہیں یہ کتنی قیمتی ہیں ان میں سے ایک انگلی آپریشن کے ذریعے جب کاٹ دی جاتی ہے تو ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ انگلی نہیں ہے انگلی کاٹ دی انگوٹھا کاٹ دیا تو ایک انگلی دونوں قدم میں سے کسی قدم کی ایک انگلی دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کی ایک انگلی کاٹنے سے پہلے ڈاکٹر حضرات بھی اور سرجن بھی کتنا کتنا سوچتے ہیں اور ان کی کتنی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کاٹنا نہ پڑے اس انگلی کو کاٹنا نہ پڑے انگلی کاٹنی نہ پڑے انگلی کو کاٹنے کی نوبت نہ آئے اور پوری انگلی تو بہت دور کی بات ہے یہ انگلی کا صرف اوپر کا پورا ہے پورا پوروا اسے اگر کاٹ دیا جائے یا وہ کٹ جاتا ہے تو جس کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس سے پوچھیے کہ کتنی کمی محسوس ہوتی ہے تو سر سے لے کر پیر کی انگلیوں تک پتہ نہیں کتنی قیمتی قیمتی نعمتیں ہیں اتنی قیمتی نعمتیں ہیں کہ اگر دولت کے ڈھیر لگا دیے جائیں تو عقل مند انسان یہ نعمتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا آنکھیں دینے کے لیے کہ آنکھیں دے دو کان دینے کے لیے کہ کان دے دو زبان دے دو ہم نعمتوں کے ڈھیر لگا دیں گے دولتوں کے ڈھیر لگا دیں گے تو بیچارہ مسکین فقیر غریب آدمی وہ کہے گا کہ بھئی یہ سوکھی روٹی جو ہمیں مل رہی ہے وہ ٹھیک ہے مگر آنکھیں تو نہیں دے سکتے زبان نہیں دے سکتے یہ تو ہمارا وجود یہ وجود سراپا नेमत है, ऊपर से नीचे तक नेमत ही नेमत, नेमत ही नेमत, नेमत ही नेमत। फिर ये चलता रहता है, यानी आंखों का काम जारी, कानों का काम जारी, नाक का काम जारी, सांस लेने का काम जारी, चबाने का काम जारी, चखने का काम जारी, बोलने का काम जारी, ये सारी मशीनरी चलती रहती है। ये फिर एक अलग सिलसिला शुरू हो जाएगा, इसमें पता नहीं कितनी अनगिनत नेमतें हैं। और इंसान अपने माफी जमीर को अदा करने के लिए सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितने अल्फाज बोल जाता है, ये भी तो अल्लाह की नेमत है। जहन में नक्शा आता है, फिर उसके लिए जहन में अल्फाज आते हैं और वो अल्फाज जुबान पर आते हैं, और उन अल्फाज की सही तरकीब और सही कंपोजिशन होता है, और फिर वो बोलता है तो सबको समझ में आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिर बहुत सी मख्फी मख्फी चीजें जो आम इंसान नहीं समझता, तो अल्लाह ने उसके लिए माहिरीन पैदा किए हैं, डॉक्टर हजरत, तो अलामत से वो पहचान लेते हैं, आंखें देखकर पहचान जाते हैं, चेहरा देखकर पहचान जाते हैं, नब्ज देखकर पहचान जाते हैं, अतिब्बा, डॉक्टर हजरत, हुकमा। फिर खाने की अनगिनत नेमतें, पीने के लिए पानी, तो जब तक कोई नेमत होती है किसी के पास, उस वक्त तक उसे उस नेमत का एहसास नहीं होता। कदर नेमत बाद ज़वाल, नेमत की कदर उस वक्त होती है जब वो नेमत रहती नहीं। तो ये जितनी भी नेमतें हैं जिन्हें हम अनगिनत नेमतें कहते हैं, इनका हमें एहसास इसलिए नहीं होता कि ये नेमतें हर वक्त हमारे साथ हैं और हमारे पास हैं। रोटी रोजाना मिल जाती है, चावल रोजाना मिल जाते हैं, मिर्च मसाले रोजाना मिल जाते हैं, नमक रोजाना मिल जाता है, पानी रोजाना मिल जाता है, तो इसकी कदर नहीं। उसको पूछो जिसे पानी न मिले, उसको पूछो जिसे रोटी न मिले, उसको पूछो जिसे चावल न मिले। मां बाप की कदर नहीं, इसलिए कि हमारे पास है, हर वक्त से रहते हैं। भाइयों बहनों की कदर नहीं, इसलिए कि हर वक्त पास है। बीबियों की कदर नहीं, इसलिए कि हर वक्त पास है। शोहरों की कदर नहीं, इसलिए कि हर वक्त पास है। असातिदा की कदर नहीं, इसलिए कि मौजूद है। शुयुख की कदर नहीं, इसलिए कि मौजूद है। घर की कदर नहीं, इसलिए कि है। तो जो चीज होती है उसकी कदर नहीं होती। जब वो चीज चली जाती है तो एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी नेमत थी, और तब हमें पता चलता है कि हमने कितनी नाकदरी की है। इल्म है तो कदर नहीं, इस पे अमल नहीं किया, कदर करके उसका हक अदा नहीं किया, भूल गए इल्म। हो सकता है दुनिया ही में एहसास हो जावे, नहीं तो आखिरत में एहसास होगा। तो नेमतें बेशुमार हैं, नेमतें बेशुमार। हमें एहसास सिर्फ उस नेमत का होता है जो नेमत नहीं होती, इसलिए कि जब नेमत नहीं होती है तो उसका एहसास होता है, ये एक फितरी चीज है। इसीलिए आंखें हैं, कान हैं, जुबान है, दांत हैं, दिल दिमाग है, पूरा जिस्म है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, सब कुछ है, लेकिन पैसे कम है। दूसरे मालदारों के मुकाबले में पैसे कम है तो उसी का रोना रोता रहता है आदमी कि बहुत तंगी है पैसे नहीं है, बहुत तंगी है पैसे नहीं है, बहुत तंगी है पैसे नहीं है, बहुत तंगी है पैसे नहीं है। और बाज लोग शिकवा भी करते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु फुला को देते हैं, फुला को देते हैं, फुला को देते हैं, फुला को देते हैं, मुझे नहीं देते। वजीफे भी मैंने बहुत पढ़े, फुला चीज भी किया, फुला अमल भी किया, नमाज भी पढ़ी। तो ये नमाजें और हज और रोजे और जकात और जिक्रुल्ला, ये इन चीजों के लिए थोड़ा ही किया जाता है, वो तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए। और अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु की तरफ जब कोई झुकता है, अल्लाह का जब कोई होता है, अल्लाह के अहकाम को पूरा करता है, तो अल्लाह की तरफ से वादा है कि वो कामयाबी देगा, अल्लाह की तरफ से वादा है कि वो फलाह देगा, दुनिया में भी देगा आखिरत में भी देगा। तो जिस शक्ल में फलाह को हम देखना चाहते हैं, अगर उस शक्ल में हमें फलाह न मिले तो हमें इत्मीनान रखना चाहिए। दुनिया में हमें किसी पर एतिमाद और भरोसा होता है, बेटे को बाप पर भरोसा है, या मुरीद को अपने शेख पर भरोसा है, या किसी शागिर्द को अपने उस्ताद पर भरोसा है, तो उस भरोसे के नतीजे में जहन में जो कुछ सोचा हुआ होता है वो नहीं मिलता, फिर भी वो ताल्लुक मुनकते नहीं करता। वो ऐसा समझता है कि ये मेरे खैरखा है, ये मेरे खैरखा है, ये अच्छे आदमी है, ये सच्चे आदमी है, ये मोतबर आदमी है, ये मुखलिस आदमी है, इन्होंने मेरे बारे में जो फैसला किया मेरे लिए इसी में खैर होगी, मुझे अभी समझ में नहीं आएगी, आगे जाकर समझ में नहीं आएगी इंशाल्लाह, और आगे नहीं तो मरने के बाद समझ में आएगी, लेकिन इसी में मेरे लिए खैर है। तो ये इंसान जो खता का पुतला है उसके ऊपर जब हम इतना एतिमाद कर सकते हैं तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु की मर्जी के मुताबिक चलने के नतीजे में अगर हमारी मर्जी वाली चीज न मिले तो अल्लाह पर यह भरोसा क्यों नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु ने तो अपने बारे में कहा है कि मैं शकूर हूं, शकूर, और शकूर वो है जो कदरदानी करता है, बंदों के आमाल की कदरदानी करता है। तो नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, जकात अदा करो, हज करो, तस्बीह तहलील जिक्र अजकार का एहतिमाम करो, ये सब कुछ करो अल्लाह को पाने के लिए। और अल्लाह को जब पा लिया उसके बाद अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहो। बल्कि जिसने अल्लाह को पा लिया है वो अल्लाह जिस हाल में रखेगा उस हाल में राजी रहेगा, और बहुत इबादतों के बाद भी अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में राजी नहीं रहता तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को पाया नहीं है अभी तक, अल्लाह को पाया नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है। बाप भी कहता है कि क्या मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं है तुमको बेटा, उस्ताद भी कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, सब्र करो मैं जो कह रहा हूं वो करते रहो, डॉक्टर भी कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक हो जाओगे। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु की तरफ से मौसलाधार बारिश की तरह नेमतें तो हर वक्त हम पर बरसती रहती हैं, लेकिन चूंकि वो नेमतें हर वक्त हमारे पास है इसलिए उन नेमतों की तरफ तवज्जो नहीं होती, और जो नेमत नहीं होती या छिन जाती है बस उसकी तरफ जहन जाता है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, मुझे सर में बहुत तकलीफ है, मैं फुला चीज ढूंढ रहा हूं वो नहीं मिल रही है। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु ने जो बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं उन नेमतों का इस्तेहजार रखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये ना शुक्री होगी कि जिस अल्लाह ने इतना कुछ दिया है उस अल्लाह के बारे में किसी एक चीज का शिकवा करता रहे आदमी कि मेरे पास पैसे की तंगी है, पैसे की तंगी है, पैसे की तंगी है, पैसे की तंगी है, रिज्क की तंगी है, रिज्क की तंगी है, रिज्क की तंगी है, घर बहुत तंग है, घर बहुत तंग है, घर बहुत तंग है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, तो बेशुमार चीजें अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु ने अता फरमाई है, उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं। और एक दो चीजें नहीं है, बस उसका रोना रोता रहता है। तो हमेशा एक बात जहन में बिठानी चाहिए कि हर इंसान के पास नेमतें हमेशा ज्यादा होती हैं। नेमतें हैं तो नेमतों के नतीजे में शुक्र वाजिब है, और कोई नेमत छीन जावे और उसकी जगह पे तकलीफ आए तो उस पर सब्र वाजिब है। तो नेमतों पर शुक्र वाजिब और नेमतों के छीन जाने पर सब्र वाजिब। और जब भी आप अपनी जिंदगी पर नजर डालोगे तो आपको पता ये चलेगा कि शुक्र की वजूह सब्र की वजूह से बहुत ज्यादा है। वजूह शुक्र वजूह सब्र से ज्यादा है नहीं, वजूह शुक्र वजूह सब्र से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्या तकलीफ है आपको? सर में दर्द है। चलो भाई सर में दर्द है, सर में दर्द है तो इस पर क्या करना चाहिए? सब्र। ये सर में दर्द सब्र की वजह है, ये रीजन फॉर सब्र है। सर में दर्द है, आंखें ठीक है तो ये शुक्र की वजह है, कान ठीक है ये शुक्र की वजह है, शुक्र का रीजन है, जुबान ठीक है ये शुक्र का रीजन है। गिनते चले जाओ पूरे जिस्म को, यानी सिर्फ जिस्म को देखो। आज घर में देखा कि आटा नहीं है, दुकान में गए तो दुकान बंद, चलो भाई ये आटे की नेमत छिन गई, आटे की नेमत से महरूम हो गई, आज रोटी नहीं पकेगी। तो आटे की नेमत से महरूम हो गए, ये वजह सब्र है, ये सब्र का रीजन है। मिर्च मसाले है या नहीं, गोश्त है या नहीं, समोसे पकोड़े है या नहीं, चावल है या नहीं, फल फ्रूट है या नहीं, सब्जी है या नहीं, दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई है, बिस्कुट है या नहीं, ब्रेड है या नहीं, डबल रोटी है या नहीं। वजूह शुक्र वजूह सब्र से हमेशा ज्यादा। हजरत उरवा इब्न जुबैर रहिमहुल्लाह ताला जलीलुल कद्र ताबीई हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अशरे मुबशरा में से हैं, और हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा जो जातुन निताकैन हैं, इनके ये बेटे हैं हजरत उरवा। तो ये हजरत उरवा रहिमहुल्लाह ताला को एक टांग में तकलीफ हो गई और उस जमाने में उनका ऑपरेशन करना पड़ा, तो टांग को काट देना पड़ा, तो एक टांग कट गई। अब एक पैर रह गया और दो हाथ रह गए, और एक शख्स जो है वो सबसे ज्यादा काम दौड़ भाग उठाना रखना ये दो पैर और दो हाथों से करता है, इन चारों में से कोई एक अगर नेमत चली जावे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहां ये भी मैं अर्ज कर दूं कि अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु का निजाम भी अजीबो गरीब है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी ये चार नेमतों में से एक नेमत छिन गई, एक ही हाथ है, मगर वो एक हाथ से ड्राइविंग भी कर लेते हैं, वो एक हाथ से अकेले ही इस्तिंजा भी कर लेते हैं, अकेले ही गुसल भी कर लेते हैं, एक हाथ से अकेले ही चाय भी बना लेते हैं और चाय पी भी लेते हैं। और ऐसे लोग भी हैं कि दोनों हाथ नहीं, तो कपड़े पहनने का काम दोनों पांव से कर लेते हैं, ऐसे भी है, ऐसे भी है। ऐसे लोग हैं जो दोनों हाथ से माजूर मगर अपने दोनों पांव से कारीगरी का काम करके खुद को और अपने अहलो अयाल को पालते हैं। तो नेमत छीनने वाला नेमत छीनता है, उस पर सब्र देता है, सब्र के नतीजे में आखिरत में पता नहीं क्या क्या देगा, और उसका बदल भी दे देता है, उसका सब्स्टिट्यूट भी दुनिया में दे देता है। तो वजूह है शुक्र जो है वो वजूह है सब्र से ज्यादा है। इसलिए जब भी कोई तकलीफ आए तो उसी को रोते नहीं रहना चाहिए। गालिबन हजरत मियां जी सैयद असगर हुसैन साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाते थे और हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सब उनको मियां साहब कहकर पुकारते थे। तो जब वो बीमार होते थे और जब उनकी कोई ताजियत के लिए इयादत के लिए जाता था और जाकर के खैर खैरियत मालूम करता था, जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करना सुन्नत है, और जब किसी के यहां कोई मुसीबत आए, किसी का इंतकाल हो जाए और कोई आफत बला आ जाए तो ताजियत करना सुन्नत है, एक मुसलमान का हक है। इयादत भी मुसलमान का हक है, ताजियत भी मुसलमान का हक है, उसके घर जाकर के ताजियत और इयादत करनी चाहिए, हॉस्पिटल में है तो वहां जाकर ताजियत और इयादत करनी चाहिए, बीमार है हॉस्पिटल में है, टेलीफोन के जरिए हो सकती है, अगर दूसरे शहर में है तो दूसरे मुल्क में है, लॉकडाउन की वजह से कोई दूसरी रुकावट है, तो जब उनको मिलने के लिए लोग जाते थे और पूछते थे कि खैरियत तबीयत कैसी है आपकी, तो वो कहते थे कि आंखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कान भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और मुंह जुबान दांत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, हाथ भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो वजूह शुक्र को बयान करते थे वो, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भी बिल्कुल ठीक है, मैदा बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, बस जरा सर में दर्द है, ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो है हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो एक ही चीज पर तवज्जुह और कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से ऐसा महसूस होने लगेगा कि मेरी पूरी जिंदगी ग्लूम है, डार्क है, क्लाउडी है और अंधेरा हो गया है और मेरी जिंदगी में कोई खुशी का सामान ही नहीं है। तो एक तरफ तो अल्लाह की नाशुक्री होगी और दूसरी तरफ जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, लोग एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, और वजह उसकी यही है कि उनकी जिंदगियों में जो पॉजिटिव्स हैं उनको नहीं देखते, वो नेगेटिव्स को देखते रहते हैं। एक शख्स है वो कुन जहन है, एक शख्स है कुन जहन है, इतना होशियार नहीं, इतना जहीन नहीं, और वो किसी मदरसे में पढ़ रहा है। अब उसके दूसरे दोस्त जो हैं वो आध घंटा पौन घंटा सबक देखने के लिए बैठते हैं और उन्हें याद हो जाता है, वो आध पौन घंटा पढ़ करके सबक याद करके खेलने में लग जाते हैं, और ये दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे तीन तीन घंटे तक भी बैठता है, इसे याद नहीं होता, कच्चा कच्चा सा याद होता है, और फिर वो क्लास में जाता है तो भूल जाता है। अब अगर वो इसी एक चीज को देखता रहेगा नेगेटिवली कि मुझे सबक याद नहीं होता, मुझे सबक याद नहीं होता, मुझे सबक याद नहीं होता, तो ये डिप्रेशन का शिकार होगा, एंग्जाइटी का शिकार होगा। उसे पॉजिटिव्स को देखना चाहिए, और उसके लिए पॉजिटिव ये है कि मेरे कुन जहन होने के बावजूद अल्लाह ताला शानहू ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई कि मैंने आलिम बनने का इरादा तो किया, और कुन जैन होने के बावजूद 6 महीने हो गए मैं अभी घर नहीं गया हूं, मदरसे में अल्लाह ने मुझे रखा है, और मेरे दूसरे साथियों को सबक याद हो जाता है 1.5 घंटे में, फिर वो खेल कूद में अपना वक्त सर्व कर लेते हैं, और मुझे 2-3 घंटे याद करने के बाद भी याद नहीं होता, कच्चा कच्चा होता है, भूल जाता हूं। लेकिन मेरे पास उनसे बड़ी नेमत है, और वो ये है कि उनका तलब इल्म में 1.5 घंटा गुजरता है और मेरे 3 घंटे गुजरते हैं। वल्लज़ी यक़्रउल क़ुरआन व यतताअऊ फ़ीह फ़लहू अजरान, वो शख्स जो कुरान मजीद की तिलावत करता है और अटक अटक के पढ़ता है उसको 2 अजर मिलते हैं, एक अजर तो तिलावत कलाम पाक का और दूसरा मुजाहदा करने का, एफर्ट एग्जर्ट करने का, एग्जर्शन का। तो एक तो पढ़ रहा है, तलब इल्म है, उसका सवाब मिलता है, और तलब इल्म के अलावा, तलब इल्म के अलावा 3 घंटे एफर्ट एग्जर्ट करता है। अब उसे ये पॉजिटिवली देखना चाहिए कि अल्लाह जल्ला जलालुहु आम मनवालुहु अच्छे काम करने वालों का अज्र जाये नहीं करते। और इब्ने शिहाब अज़-ज़ुहरी रहिमहुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि भी बहुत बड़ी इबादत है इल्म को हासिल करना, इल्म को हासिल करना बहुत बड़ी इबादत। एक शख्स जो है वो 1 घंटे में 20 रकअत तरावी की पढ़ लेता है और दूसरा 1.5 घंटे में पढ़ता है, तो तरावी की सुन्नत मुअक्कदा की जिम्मेदारी से तो दोनों फारिग हो गए, मगर एक का वक्त इबादत में 1 घंटा सर्व हुआ और दूसरे का 1.5 घंटा सर्व हुआ, तो फर्क तो जरूर होगा, फर्क लोगों को नजर आता है, इसीलिए तो 1.5 घंटे की छोड़ करके 1 घंटे वाली में जाते हैं। बहुत से सुनने वाले अभी ये कह रहे होंगे कि ये फर्क तो हमें भी नजर आता है, फर्क जरूर होगा कहने का क्या मतलब, फर्क तो है, तो फर्क हमें भी ये नजर आता है कि वहां 1.5 घंटा है, यहां 1 घंटा है, तो 1 घंटे वाली पढ़ लो ताकि आधा घंटा हमारा दुनियावी कामों में सर्व हो, खाने में, पीने में, बातचीत में। नहीं, मैं दूसरा फर्क बयान कर रहा हूं कि हमारे जहन में ये फर्क आना चाहिए कि मेरे पास वक्त भी है और मैं कोई घर जाकर जल्दी सोने वाला नहीं हूं दूसरे दिन काम की फिक्र में, तो मैं ये 1.5 घंटे वाली पढ़ूं ताकि पूरे 30 दिन में मेरे 15 घंटे इबादत में सर्व हो और शबे कदर में मेरा 0.5 घंटा तराई में ज्यादा गुजरेगा, 15 घंटे अल्लाह के सामने मुझे ज्यादा खड़े रहने का मौका मिलेगा। तो इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा उबिद अल्लाह बिशयइन अफ़ज़ल मिन तलबिल इल्म, तलब इल्म से बढ़कर कोई इबादत ही नहीं है। इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तलब इल्म से बढ़कर कोई इबादत नहीं। और इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है वो उलमा से आप पूछिए। इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के असातीन में से नहीं, उम्मत के असातीन में से, यानी 1400 साल में जो बड़े बड़े उलमा पैदा हुए हैं उनमें से टॉप की अगर फहरिस्त बना ली जाए तो उसमें इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह जरूर आएंगे। सबसे पहले उम्मत के सामने किताबी शक्ल में हदीसों को पेश करने वाले इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, हदीसों की तदवीन करने वाले। और नेक इस कदर थे, नेकी इतनी थी, यानी इतने बड़े थे, उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला ने जिन बड़े बड़े उलमा पर खत लिखा था कि तुम लोग जो हैं वो हदीसें तुम्हारे सीनों में हैं, हदीसें नोटबुक्स में हैं, अब जो है उम्मत के लिए किताबी शक्ल में तुम तैयार करो, ऑथर करो हदीस की किताबों को, यानी हदीसें तो मौजूद है लेकिन किताबों को, हदीसों को कंपाइल करो। तो उनमें से ये भी है, इस सन 1999 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 90 साल बाद ये खत लिखा गया। और सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन और تابعین رحمہم اللہ تعالی کو اللہ تعالی شانہ نے فوٹوگرافک میموری عطا فرمائی تھی، تو حدیثیں ان کو بہت زیادہ یاد تھی، اور پھر بہت سو نے لکھی ہوئی بھی تھی، اپنے اپنے کمپائلیشنز تھے، مگر وہ اپنے لیے تھے، امت کے لیے نہیں تھے، اپنے اپنے کمپائلیشنز تھے. جیسے یہ ہمارے یہاں سے المعوذات جو چھپی ہے، جس میں سارے تعوذات کو جمع کیا گیا ہے قرآن مجید کی اور احادیث شریف آگے، اور اس کو سات منزلوں میں ترتیب دے کر چھاپ دیا گیا ہے. تو شروع میں یہ میں نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اپنے لیے، تو شروع میں اپنے لیے تھا، یعنی نیت تو یہی تھی کہ لوگوں کو پہنچانا چاہیے، لیکن شروع میں یہ سوچا کہ نہیں اپنے لیے پڑھتے رہے، اور پھر یہ آگے جا کر کے ارادہ ہوا کہ آگے بھی پہنچاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 90 سال کے بعد حدیثوں کو لکھا گیا، نا ایسا نہیں تھا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ یہاں لیسٹر کے اندر درجنوں حفاظ ہیں، اور فرض کر لیجئے کہ کسی وجہ سے یہ قرآن سارے مٹ جاوے، قرآن 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 مٹنے کے بعد جو ہے قرآن کی کوئی کاپی نہیں رہی ریٹن فارم میں، لیکن درجنوں حفاظ، درجنوں حفاظ، درجنوں حفاظ وہ پڑھ بھی رہے ہیں، آگے دوسروں کو حافظ بھی بنا رہے ہیں، دور بھی چل رہا ہے، ایک دوسرے سے یاد بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح چلتے چلتے 80 سال گزر گئے، اور 80 سال گزرنے کے بعد کسی نے کہا کہ بھائی قرآن لکھو تاکہ ہم لوگ بھی پڑھ سکیں، عوام بھی، ہم بھی پڑھ سکیں. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ 80 سال پہلے جو قرآن مٹ گیا تھا وہ اب نئے سرے سے کہاں سے آ گیا، نہیں، وہ سینہ بسینہ منتقل ہو رہا تھا. اور ایسی فوٹوگرافک میموری تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوٹوگرافک میموری کے بارے میں آتا ہے کہ مروان کے دربار میں، غالباً مروان کے دربار میں ایک منصوبہ بنایا گیا کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حافظے کو اور ان کی میموری کو چیک کرنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ آپ جو ہیں ہمیں حدیثیں سنائیے، اور پردے کے پیچھے کاتموں کو بٹھایا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیثیں بولتے چلے جائیں تم ان کو لکھتے چلے جاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیثیں سناتے تھے تو وہ کوئی مرتب کتاب نہیں تھی، ان کو حدیثیں یاد تھی. جیسے کسی عالم سے اگر آپ کہیں کہ مولانا صاحب کچھ حدیثیں ہمیں سنائیے کسی مجلس میں، انہوں نے ایک حدیث سنائی، دوسری حدیث سنائی، تیسری حدیث سنائی، آپ کے اور ایک سنا ہو تو ایک اور سنائی، آپ کے اور ایک سنا ہو تو پانچویں سنائی. اب وہ کسی کتاب کی ترتیب سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے حافظے میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ انہوں نے موقع کو سامنے رکھ کر کے ایک حدیث سنائی، دوسری سنائی، تیسری سنائی، 100 حدیثیں سنائی، یا 100 سے بھی زیادہ ہوگی، اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے، 100 تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے واقعے میں ہے. انہوں نے حدیثیں سنائی، حدیثوں کا ایک مجلس رہی، آدھ گھنٹے، پون گھنٹے، ایک گھنٹے کے لیے مجلس رہی حدیث کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ختم ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی، پورے 1 سال تک انتظار کیا گیا. مروان ہی عبد الملک ابن مروان، 1 سال جب گزر گیا تو 1 سال کے گزرنے کے بعد انہی کاتبوں کو پھر پردے کے پیچھے بٹھا دیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ درخواست کی گئی کہ گزشتہ سال آپ نے جو حدیثیں سنائی تھی وہ بڑی پیاری حدیثیں تھی، ذرا دوبارہ وہ حدیثیں ہمیں سنا دیجیے. تو اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ بھئی وہ تو میں نے ایسے ہی سنا دی تھی، اب مجھے کیا پتا کہ میں نے کون سی حدیثیں سنائی ہیں، اگر تم مجھے حدیث کا ایک ایک جملہ شروع سے بولتے جاؤ تو میں سناتا جاؤں گا، اگر مجھے ٹیسٹ ہی کرنا ہو تو. تو کسی کو ان کے حافظے پر شبہ نہ ہوتا، شبہ نہ ہوتا. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی کہا گیا آپ نے حدیثیں پڑھنا شروع کیا، اور گزشتہ سال جتنی حدیثیں جس ترتیب اور آرڈر سے پڑھی تھی اتنی ہی حدیثیں اسی ترتیب سے اسی آرڈر سے بغیر کسی غلطی کے آپ پڑھ گئے. اب جو جو لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی حدیثیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 80 سال بعد لکھی گئیں، ان حدیثوں کا کیا اعتبار؟ تو ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جن کے پاس اتنی میموری ہو، ایسی فوٹوگرافک میموری، ان کو حدیثیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی یاد ہو حدیثیں، ان کو حدیثیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے بے شمار صحابہ تھے، ایسے بے شمار تابعین تھے، ایسے بے شمار تبا تابعین تھے، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا دور تو بعد کا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی 100 سال بعد آتے ہیں. 194 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 194 ہجری. تو تدوین حدیث کا کام شروع ہوا اس کے 100 سال بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ دنیا میں آتے ہیں. پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ اتنا قوی تھا، اتنا قوی تھا، اتنا قوی تھا، اتنا قوی تھا کہ ان کے امتحان لینے والوں نے بھی ان کا امتحان لیا اور وہ دنگ اور حیران رہ گئے، دنگ اور حیران رہ گئے وہ. اور امتحان لینے والے بھی ہوتے ہیں، حاسد بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی، حقیقت میں بھی امتحان لینا چاہتے ہیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آدمی بہت مشہور ہو گیا ہے، کہیں لوگ غلط آدمی کے پیچھے نہ چل پڑے تو ذرا اس کا امتحان لے لیتے ہیں. اور علم کا چرچا، تو 10 آدمیوں کو مقرر کیا گیا، غور سے سنیے اس کو، 10 آدمیوں کو مقرر کیا گیا اور ایک ایک آدمی کو 10 حدیثیں دی گئیں. آپ 10 حدیثیں، آپ 10 حدیثیں، آپ 10 حدیثیں، آپ 10 حدیثیں امام بخاری کے سامنے پڑھے ہیں. اور حدیث جو ہے، حدیث ایک تو ٹیکسٹ ہوتا ہے حدیث کا، اور دوسرا اس کا چین آف نریشن ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ فرمائیں گے کہ مجھ سے میرے استاد نے یہ بیان کیا، ان سے ان کے استاد نے بیان کیا، ان سے ان کے استاد نے بیان کیا، ان سے ان کے استاد نے بیان کیا. تو ایسی 100 حدیثیں، اور 100 حدیثوں میں سے ہر حدیث کی ایک ایک چین آف نریشن سند، اور ایک ایک حدیث متن ٹیکسٹ. تو یہ چین اور ٹیکسٹ کو جمبل اپ کر دیا گیا. پہلی حدیث کی چین جو ہے وہ پانچویں حدیث کے ساتھ ملا دی گئی، پانچویں حدیث کی چین پہلی حدیث کے ساتھ ملا دی گئی. چین الگ حدیث کی اور حدیث الگ چین کی، جمبل ڈب 100. اور 10 حدیثیں 10 آدمیوں نے لے لی. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب مجلس علمی میں تشریف فرما ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں حدیثیں پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ ماہر ہیں تو آپ صحیح غلط ہمیں بتا دیجیے. جیسے سونا ہے تو سنار کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ 18 کیرٹ ہے، 21 کیرٹ ہے، کیا ہے یہ، سونا بھی ہے یا نہیں، یا پیتل ہے. پیسے جو ہے وہ بینک والا بتائے گا کہ جعلی نوٹ ہے یا صحیح نوٹ ہے. تو حدیث کو پرکھنے والے یہ لوگ تھے. جہبیز تھے، بہت بصیرت کے ساتھ پرکھنے والے. فوراً ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ حدیث کیسی ہے، کس درجے کی ہے. تو پہلے نے حدیث پڑھ کر کے سنائی. اب ظاہر ہے کہ جو چین آف نریشن پڑھی اس کے ساتھ جو حدیث نیچے آتی ہے وہ حدیث نہیں تھی، دوسری حدیث تھی. تو چین الگ اور حدیث الگ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ لا عارفہ، میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ میرے علم میں نہیں ہے. دوسری پڑھی، کہا لا عارفہ. تیسری پڑھی، لا عارفہ. چوتھی پڑھی، لا عارفہ. پانچویں پڑھی، لا عارفہ. جو ماہرین فن تھے وہ سمجھ گئے کہ اتنا اعلی درجے کا آدمی کہ حدیث اور سند میں تبدیلی کر کے پیش کی گئی تو وہ فوراً کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث گڑبڑ ہے اس میں، لا میں نہیں جانتا. اور جو ماہرین فن نہیں تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسے ہی بہت بڑے علامہ اور محدث मशहूर हो गए, इनको तो बुझाता ही नहीं, ये तो हर चीज पर ला हरिबू कहते हैं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला, उनके जहन में ऐसा आया। इससे कि हर एक की पहचान ने की अपनी सलाहियत होती है ना, इसी वजह से अवामुन नास जो है वो बेचारे पहचान नहीं पाते कि बड़े मौलाना कौन है और छोटे मौलाना कौन है। बड़े मौलाना कौन है, छोटे मौलाना कौन है। एक जगह पर हमारे बुजुर्गों में से हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए एक मस्जिद में, तो बयान किया हजरत ने। अब वहां के मकामी मस्जिद में जो इमाम साहिब थे वो भी अच्छे आलिम है, जी इस्तेदाद, लेकिन जाहिर है मौलाना अबरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबरार अहमद साहिब रहमतुल्लाह अलैह, वहां की मकामी मस्जिद के जो इमाम साहिब हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और अवामुन नास के मर्तबे पर उतर कर बहुत आसान अल्फाज में वो अपनी बातों को समझा देते हैं। और हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी मकाम इतना ऊंचा था कि वो नुजूल फरमाते थे, फिर नुजूल फरमाते थे, फिर नुजूल फरमाते थे, यानी बिल्कुल नीचे उतर जाते थे तो भी उलमा को भी मुश्किल लगता था, इससे कि बड़े साहिब इल्म आदमी थे। तो जब बयान से फरागत हुई तो हजरत के तशरीफ लाने से पहले तो बहुत शोर था कि बहुत बड़े मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बड़े मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बड़े मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। तो वहां बयान में एक हाजी साहिब भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बयान से फारिग होने के बाद ये कहा कि बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े मौलाना, इनसे तो हमारे इमाम साहब अच्छे हैं, यानी हमारे इमाम साहब इनसे तो अच्छा बयान कर लेते हैं। ये तो अवाम जो है, अवाम वो अवाम अवाम है, इसीलिए हम अवामुन नास से ये कहते हैं, किसी और मतलब या मकसद से नहीं। YouTube, सोशल मीडिया वगैरह पर आप किसी का भी बयान सुनना चाहें तो जरा कंफर्म कर लीजिए किसी ऐसे आलिम से जिसको आप पहचानते हैं, जिसके दीन और जिसके इखलास और लिल्लाहियत और फिक्र आखिरत पर आपको एतिमाद है कि इनका बयान सुनना मेरे लिए मुफीद है या नहीं। भाई जब शिकवा आप करते रहते हैं कि टाइम नहीं है, नो टाइम, वेरी बिजी, तो जब नो टाइम है तो हर किसी का बयान नहीं सुनना चाहिए ना। जब टाइम ही कम है तो किसी ऐसे आदमी का एकाध बयान सुन लो जो आपके लिए आखिरत में मुफीद हो, इसका भी सुनते हैं, उसका भी सुनते हैं, उसके लिए टाइम है। और किसी अच्छे आदमी के पास जाने के लिए कहा जाता है कि वहां मजलिस में जाओ, इनका बयान सुनो, तो उसके लिए नो टाइम। तो जब हमारे पास टाइम नहीं है तो एकाध बयान सुनो, तो ऐसे आदमी का बयान सुनो जो आपको अल्लाह से जोड़े, आपको दीन से जोड़े, आपके अकायद और नजरियात की हिफाजत करे। तो जो साहेब फन थे वो तो समझ गए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रग पकड़ ली है इन 10 आदमियों की, और जो बेचारे साहेब फन नहीं थे वो ऐसा समझने लगे कि इमाम बुखारी को तो कुछ आता ही नहीं है, इसी को तो हर बात पर ला आरिफू, 100 की 100 हदीसें सुनने के बाद कहा ला आरिफू। और जब फारिग हो गए उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले शख्स की तरफ मुतवज्जे होकर के ये फरमाया कि आपने सबसे पहले ये हदीस इस तरह पढ़ी, यानी एक ही मर्तबा सुनी, गलत तरीके से पढ़ी गई हदीस सुनी एक मर्तबा, और एक मर्तबा सुनकर के याद हो गई, और एक मर्तबा सुनी कि पहली कौन सी पढ़ी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी, आपने सबसे पहली हदीस इस तरह पढ़ी, वो इस तरह नहीं इस तरह है, आपने दूसरी हदीस इस तरह पढ़ी इस तरह नहीं इस तरह है, आपने तीसरी हदीस इस तरह पढ़ी इस तरह नहीं इस तरह है, दूसरे के पास गए आपने सबसे पहली हदीस इस तरह पढ़ी इस तरह नहीं इस तरह है, ऐसा करके 100 की 100 हदीस सुना दी। हाफिजुद्दुनिया हाफिज इब्ने हजर अलस्कलानी रहिमहुल्लाह तआला इस पर तबसिरा करते हैं कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सनद को सही हदीस के साथ जोड़कर पेश कर दिया। ये कोई कमाल की बात नहीं, ये तो इनका फन था, ये तो हाफिज हदीस थे, तो 100 हदीसें सही सनद के साथ उन्होंने बयान कर दी, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि हदीसें गलत सनद के साथ एक मर्तबा सुनकर उनको याद हो गई। और यह भी कहा जा सकता है कि कमाल यह है कि हदीसें गलत सनद के साथ सुनकर उन्हें याद कर ली, और उन्हें याद भी उसी तरतीब से की जिस तरतीब से सुनाने वालों ने सुनाई थी। तो जब ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी 200 हिजरी के बाद एक शख्स दुनिया में आता है और उसके पास ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी हो, तो आदमी लिखता क्यों है? लिखता क्यों है? लिखता तो इसलिए है कि याद नहीं रहता। जिसको याद रह जाता है वो लिखता नहीं है। मेरे वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह को कोई टेलीफोन नंबर बताता था तो उनको याद हो जाता था, तो वो लिखते नहीं थे। तो लिखते तो इसलिए है कि याद नहीं रहता, तो याद रहता है तो लिखता नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इब्ने ये मैंने इसलिए अर्ज कर दिया कि किसी के जहन में ये ना आए, असल में गलती से मेरी जुबान से सन निकल गया कि सन 99 हिजरी में ये हदीस लिखी गई, तो मुझे थोड़ी ये वजाहत करनी पड़ी। इसलिए कि दुनिया में एक तबका है जो ये कहता है कि सिर्फ कुरान है, हदीस की कोई अहमियत नहीं, हदीस की कोई हैसियत नहीं, हदीस का कोई वजूद नहीं। और उस पर वो एतराज ये पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 90 साल के बाद हदीसें लिखी गई हैं, तो 90 साल में तो जाने वाले दुनिया से चले गए होंगे। तो उनकी खिदमत में गुजारिश ये है कि ये किसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हदीसें लिखी नहीं गई हैं? खुद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बुखारी शरीफ की हदीस में इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि फइन्नहु काना यक्तुब वला अक्तुब, कि अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने अल आस रजी अल्लाह अन्हु हदीसों को लिखते थे और मैं नहीं लिखता था। तो मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं पेश आती थी, और उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं थी इसलिए उनको लिखने की जरूरत पेश आती थी। और बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई, उस पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने कोई बात अर्ज की, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई। तो वहां यमन से एक साहिब आए हुए थे, उनका नाम अबू शाह था, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये हदीस लिखवा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उक्तुब ली अबी शाह, अबू शाह के लिए लिखो। देखो लिखने का मामूल था, जिनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं थे वो लिखते थे, और जिनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थे वो लिखते नहीं थे। जैसे आजकल भी यूनिवर्सिटी में जो तालिबे इल्म बहुत जहीन होता है वो शॉर्ट नोट, बिल्कुल शॉर्ट, अगर कोई दूसरा लिखे तो उसे समझ में भी ना आवे, इससे कि उसकी मेमोरी है कि एक लफ्ज देख करके उसे पूरा बयान समझ में आ जाएगा, पूरा नुक्ता पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। और जो कमजोर जहन के होते हैं वो पूरा पूरा लिखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हदीसें लिखी जाती थी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी लिखी और भी सहाबा ने लिखी, उनकी अपनी अपनी नोटबुक्स थी जिसमें हदीसें थी, और हदीसें लिखी भी जाती रही इन 90 ईयर्स में। और फोटोग्राफिक मेमोरी। तो इब्ने शिहाब अज़-ज़ुहरी रहिमहुल्लाह तआला के पास भी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, उन्होंने भी बहुत हदीसें हासिल की थी। तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह तआला को यह अंदेशा हुआ कि बड़े बड़े उलमा इंतकाल करते चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे फोटोग्राफिक मेमोरी का सिलसिला खत्म हो जाए तो हदीसों का क्या हुआ। फइन्नी खिफ्तु दुरूसल इल्म व ज़िहाबल उलमा, मुझे अंदेशा है कि उलमा चले जाएंगे, इल्म मिट जाएगा, इसलिए लिखो लिखो। तो जिन तीन हजरात के नाम आते हैं कि सबसे पहले ये लिखने वाले हैं, उनमें इब्ने शिहाब अज़-ज़ुहरी रहिमहुल्लाह तआला सिरे फहरिस्त थे। तो आलिम भी बहुत बड़े, इतने बड़े आलिम, इतनी बड़ी दीन की खिदमत उन्होंने की, और इतनी बड़ी दीन की खिदमत करने के साथ दीनदारी कितनी थी वो देखिए आप। दीनदारी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مقابر مسلمین میں دفن مت کرنا، مجھے ایسی جگہ پر دفن کرنا جہاں سے لوگوں کا خوب گزر ہو رہا ہو، کسی مین روڈ پر مجھے دفن کرنا، یعنی مین روڈ کی سائیڈ پر جہاں سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہو. اس سے کہ جب بھی کوئی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو کیا کرے گا، وہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے گا اور ٹھہر کر کے کچھ ایصال ثواب کرے گا، اور اگر کچھ نہ کر سکا تو جب قبر پر نظر پڑے گی تو وہ اتنا تو کہے گا کہ اللہ رحم فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے. یعنی خود کو اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد بھی محتاج اتنا سمجھتے تھے کہ یہ وصیت کر کے گئے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام عوام میں سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا. تو ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، یہ علماء سے آپ پوچھیے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، اساتین زمانہ میں سے نہیں، اساتین امت میں سے. 1400 سال میں جو بڑے بڑے حضرات گزرے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا یہ فتویٰ ہے، ما عبد اللہ بشیء افضل من طلب العلم، کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے طلب علم سے بڑھ کر. اس لیے کہ اگر طلب علم نہیں ہوگا تو باقی ساری عبادتیں دفن ہو جائیں گی. یہ تو جڑ ہے، طلب علم نہیں ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا تو باقی عمل کا تو پھر. تو بات کہاں سے چلی تھی، بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ طالب علم جو کن ذہن ہے وہ 3 گھنٹے پڑھتا ہے تو ایسا کیوں سوچے، وہ ایسا کیوں سوچے، وہ ایسا سوچے کہ 3 گھنٹے میری عبادت میں سرو ہو رہے ہیں اور پھر مجاہدہ میرا ہے کہ مجھے کچھ یاد، ان کو تو یاد ہوتا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں، مجھے تو یاد نہیں ہوتا پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اچھے کام کرنے والے کی اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے. ایسے طالب علم کو پوزیٹیولی سوچنا چاہیے کہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں مجھے ان سے زیادہ انشاءاللہ ملے گا. اور کیا اللہ آخرت ہی میں دے گا؟ نہ، اللہ میری محنتوں کے نتیجے میں عربی دوم میں نہیں تو سوم میں، نہیں تو چہارم میں، نہیں تو پنجم میں، نہیں تو آخری سال میں ذہن کھول دے گا. اور اگر ذہن نہیں کھولے گا اور علمی لائن کی خدمت مجھ سے نہیں لے گا تو اللہ کوئی بڑی خدمت دوسری میرے ذریعے سے لے گا. ایسے لوگ ہیں کہ جو پڑھتے رہے کن ذہن ہونے کے باوجود اور اللہ تعالی شانہو نے براہ راست ان سے علمی خدمت نہیں لی، مگر بہت بڑا دارالعلوم انہوں نے قائم کیا اور وہ ذریعہ بن گئے درجنوں افراد کے علمی خدمت میں لگنے کا. یہ صبر اور شکر کی بات چل رہی ہے کہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. آج کل جو ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں بس یہ اللہ کی طرف توجہ کم، اللہ کی طرف توجہ کم، بس حالات کی طرف، حالات ذرا کچھ ہو جاتا ہے تو ہائے ہائے، ذرا کچھ ہو گیا تو ہائے ہائے، ذرا کچھ ہو گیا ہائے ہائے. کام پر سے نوٹس مل گئی کہ بس 2 ہفتے کے بعد آپ کا کام ختم، 1 مہینے کے بعد اب گھبراہٹ شروع ہو گیا. دینی معاملات میں کوئی گھبراتا نہیں ہے. کورونا کا رونا تو بہت رو رہے ہیں، جہاں دیکھو کورونا کا رونا. اور اب جو ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایسا لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ خوف بھی چلا گیا. تو دنیاوی نقصانات کی فکر میں سب پڑ جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے گھر کرائے کا ہے اپنا نہیں ہے، اپنا ہے تو چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے، گارڈن کے بغیر ہے گارڈن والا نہیں ہے، گاڑی کم درجے کی ہے اپنی نہیں ہے، جو پیدل چلنے والا ہے اسے بائسیکل نظر آتی ہے، بائسیکل والے کو موٹر بائک نظر آتی ہے، موٹر بائک والے کو کار نظر آتی ہے، اور کار والے کو بھی اطمینان نہیں ہوتا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اچھی گاڑی اگر آپ کو مل جائے گی تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا؟ نہیں، دنیا کی سب سے اچھی گاڑی جس کو مل جاتی ہے وہ دنیا سے باہر، उसके तसव्वुर और दिमाग और इमेजिनेशन की दुनिया में जो गाड़ी होती है ना, उसकी तलब में वो रहता है, वो भी मुतमईन नहीं रहता। जितना गैर मुतमईन ये पैदल चलने वाला है, उतना ही गैर मुतमईन वो मर्सिडीज में बैठने वाला है। 25,000 की मर्सिडीज वाला गैर मुतमईन कि वो 30,000 वाली नहीं खरीद सका, और 30,000 वाली वाला वो गैर मुतमईन इसलिए कि उसकी नजर 40,000 वाली पर है। लेकिन जो अल्लाह का हो जाता है और उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है और कनाअत से भर जाता है, तो वो बगैर बाइसिकल के भी काने, उसको उतना ही दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है बगैर बाइसिकल के जितना उसको मर्सिडीज मिल जाने से होगा, और मर्सिडीज मिल जाने से उतना ही होगा जितना बाइसिकल मिल जाने से होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा कन्नेअनी बिमा रज़क्तनी, ये अल्लाह तूने मुझे जो कुछ दिया है उससे ऊपर वाली चीज दे दे, उससे ऊपर वाली चीज दे दे, उससे वो तो उसका तो नाम होता ना ही सिलसिला है। ये अल्लाह जो तूने मुझे दिया है बस इस पर मुझे कनाअत अता फरमा दे, मेरा दिल गनी हो जावे। लैसल गिना अन कसरतिल हरज, बहुत मालो असबाब का जमा हो जाना ये मालदारी नहीं, इससे दिल मुतमईन नहीं होता। वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, अंदर दिल मुतमईन हो जाए कि मेरे पास जो कुछ है वो इनफ है। वो तो जो माल की हवस वाले लोग होते हैं और माल के पीछे दौड़ने वाले लोग होते हैं और जिनकी मंजिलें तय होती ही नहीं, इसलिए कि अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो आगे एक दूसरी मंजिल, वहां पहुंचते हैं तो आगे, तो वो ऐसे काने लोगों को, कनात वाले लोगों को देखते हैं कम दर्जे में, तो उनको ऐसा होता है कि ये बहुत परेशान होंगे बेचारे, ऐसा उनको होता है, ये बहुत परेशान होंगे बेचारे, ये बेचारे बेवसाइल हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये बेचारे जरूरतमंद हैं। उन्हें क्या पता कि उनकी अपनी जिंदगी में उनको जो लुत्फ आता है, उनको जो सुकून मिलता है, और ये बहुत से लोगों का तो फक्र भी इख्तियारी होता है, वो जमा करना ही नहीं चाहते, वो तमा भी नहीं करते, जमा भी नहीं करते। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु की बेशुमार नेमतें हैं, तो हमें जो है थोड़ा बहुत ये इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। हमारे जिस्म पर भी अगर हम गौर व फिक्र करने जाएं तो हमारे जहन में भी आएगा, यानी अगर गौरव फिक्र करने जावे कोई शख्स, हम गौरव फिक्र करते नहीं लेकिन करने जावे तो ऐसा आएगा कि ये 5 उंगलियां क्यों है, 6 क्यों नहीं है, एक और होती तो शायद काम ज्यादा आसान हो जाता। और खूबसूरत से खूबसूरत आदमी भी, मर्द या औरत भी, अगर नेगेटिविटी के साथ अपने चेहरे पर नजर डालेगा आईने के अंदर तो उसे नुक्स नजर आएगा। ये अल्लाह की हिकमतें होती है। परफेक्शन के अंदर इम्परफेक्शन भी अल्लाह की हिकमत है, कमाल में नुक्स ये अल्लाह की हिकमत होती है। अगर इस दुनिया के अंदर हर चीज अगर कामिल होती तो फिर जन्नत में क्या होता। इसलिए जो नेमतें हैं उन पर गौर करो। जब भी कोई ऐसी तकलीफ हो जाए कि मेरी औलाद अच्छी नहीं है, मेरी औलाद नाफरमान है, तो बाकी एक नाफरमान है, बाकी 4 जो फरमा बरदार है उनकी तरफ देखो ताकि दिल को सुकून पहुंचे, और इसके बारे में दुआ करो, दुआ करो। मेरे भाई के पास जो दौलत है उतनी मेरे पास नहीं है, तो अपने पड़ोसी की तरफ देखो जो आपसे कम दर्जे का है। आप ये देखो कि मेरे पास जो है वो मेरे लिए काफी है या नहीं। अगर बीमार हो जाए तो ये देखो कि 50 साल तक तो मैं कभी बीमार नहीं हुआ, आज अल्लाह ने बीमार किया है तो अल्लाह ताला शानो मेरे गुनाहों को माफ कर रहे होंगे, अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत में कोई दर्जा मुकर्रर किया हुआ होगा वहां तक पहुंचाने के लिए कर रहे होंगे। पॉजिटिवली 10 इम्तिहान थे, पहला इम्तिहान अच्छा नहीं गया तो पॉजिटिविटी कि इंशाल्लाह आइंदा 9 अच्छे जाएंगे, तो उन 9 में अगर मेहनत करेंगे तो ये 10वें के कम मार्ग जो है वो एवरेज पर आ जाएगा। लेकिन अगर पहले की वजह से मायूस हो गया तो कुछ नहीं होगा। अब तक अगर दीन में नाकामी रही है तो ये भी शैतान का एक हरबा होता है कि अब करके क्या करेगा, बूढ़ा हो गया है, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजरी है। नहीं मेरे भाई, बड़े से बड़ा गुना अगर इंसान उससे तौबा कर लेता है, अल्लाह जल्ल जलालहू वा मनवालहू की नजर में वो ऐसा ही हो जाता है जैसे वो गुना किया ही नहीं है, फरिश्तों की नजर में ऐसा ही हो जाता है जैसे उसने वो गुना किया ही नहीं है। कुफ्र में मुब्तला शख्स भी अगर तौबा कर ले, दुनिया उसके बारे में ऐसा सोचती रहेगी कि 90 साल तो कुफ्र में गुजारे हैं और 1 महीना इस्लाम में, अब सीधा जन्नत में चला गया होगा। मगर नहीं, जीना करने वाले को लोग जानी की नजर से देखें, चोरी करने वाले को लोग चोर की हैसियत से देखें, मगर जब वो तौबा कर लेता है, और अक्सर तो ये होता है कि जब कोई सच्ची पक्की तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला शानहु उसका इमेज दूसरों के दिलों में भी दुरुस्त फरमा देते हैं। इसलिए कि जब वो अल्लाह की नजर में गुनहगार नहीं है तो बंदों की नजर में क्यों गुनहगार रहेगा। और तौबा करने वाले को बुरी नजर से देखना भी नहीं चाहिए। एक शख्स की पिछली जो भी जिंदगी है, कहां से कहां आदमी पहुंच जाता है। इब्ने साबात गालिबन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का एक डाकू था, और ऐसा डाकू था कि उसका नाम सुनते थे तो लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाता था। इब्ने साबात, और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, और जेल से छूट करके आया, एक हाथ तो कटा हुआ है, एक ही हाथ है, और इरादा कर लिया कि आज डाका डालना है। और बड़ी हवेली देखी उसने बगदाद में, दिन को वहां से ऐसे गुजरा, दिन को ही तो प्लानिंग होती है कि ये कोई बड़ी हवेली लगती है, घुसा अंदर घुसा तो बहुत ताज्जुब हुआ उसे कि हवेली तो बहुत बड़ी मगर अंदर कुछ भी नहीं, हवेली बहुत बड़ी मगर अंदर कुछ भी नहीं। उसकी नजर जो है वो कपड़ों की गठड़ियों पे पड़ गई, कुछ वहां कपड़ों की गठड़ियां थी। उसने सोचा कि अब किसी दूसरे घर में डाका डालने का तो टाइम नहीं है, अब आज जो कुछ है इसी को उठा करके ले जाऊं। तो उसने वो कपड़ों की गठड़ियों को एक साथ करने की कोशिश की, लेकिन हाथ एक ही था, माजूर था। बस अचानक उसने आवाज सुनी और एक टिमटिमाते हुए चिराग को हाथ में लेकर के एक शख्स दाखिल हुआ उस कमरे में, इसलिए कि उसकी आवाज सुनी। तो उसने सोचा कि मैं जिस काम के लिए घुसा हूं घर में, ये भी इसी काम के लिए घुसा हुआ है। तो उसने कहा, देख मैं यहां पहले आ गया हूं। इब्ने साबात ने कहा, इसलिए मेरे साथ शरीक होना चाहता है तो शरीक हो जा, लेकिन हिस्सा जितना मैं दूंगा उतना ही तुझे मिलेगा। का बहुत अच्छी बात है। दिया एक तरफ रखा और दो गठड़ियां बनाई, एक बड़ी और एक छोटी, यानी गठड़ियों की भी गठड़ियां बनाई। और इब्ने साबात से उस नववारिद ने, आने वाले ने कहा कि ये छोटी आप ले लीजिए, इससे कि आपका एक ही हाथ है। महसूस कर लिया और कहे, बड़ी मैं उठाऊंगा। अब इब्ने साबात जो है वो ताकतवर था, ये साहिब कमजोर थे अंदर दाखिल होने वाले बाद में। अब अंधेरे में जल्दी जल्दी शहर से बाहर निकलना था। उस जमाने में डाकू लोग जो है बाहर गारों में रहते थे, केव्स में रहते थे। तो वो जो नहीफ आदमी थे, उन्होंने गठड़ियां भी ज्यादा ले ली थी, तो ज्यादा तेजी से चल नहीं सकते थे। तो ये गुस्से में आकर डांटता बहुत था कि तू नालायक है, जल्दी चल हमारे साथ, तू मुझे भी पकड़वा देगा। और फिर तो मारपीट की भी नौबत आ गई, लाते मारी कि नालायक तो जल्दी चलता नहीं है, गिर जाता है। बहरहाल मंजिल मकसूद तक पहुंच गए, और मंजिल मकसूद तक जब पहुंचे तो कहा कि देख, मैंने तुझे पहले से कहा था कि तकसीम में मेरी मर्जी चलेगी। तो कहा कि मुझे तकसीम में कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया था, ये सब कुछ आपका है। और ऐसा कह करके वो शख्स फौरन वहां से अवजल हो गया। उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि यार इतनी बड़ी हवेली, इसके अंदर डाका डाला और सिर्फ चंद गठड़ियां कपड़ों की मिली, اور پھر یہ شخص کون تھا جو اندر داخل ہوا تھا، میری مدد بھی کی، میرے ساتھ ڈاکے میں حصہ بھی لیا اور کچھ بھی نہیں لیا. تو دوسرے دن یہ بازار میں گیا اور بازار میں جا کر کے اس نے وہاں آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی حویلی ہے. تو کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم نئے ہو بغداد میں. تو کہا کہ ہاں نیا ہوں، چونکہ ایک لمبی مدت جیل میں کاٹ کر کے آیا تھا. تو کہا شیخ زمان جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی حویلی ہے یہ. اب اس نے بھی نام تو سنا تھا، کہا او جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کی. تو کہا کہ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہاں ملیں گے؟ تو کہ ابھی نماز کے لیے تشریف لائیں گے تھوڑی دیر میں. بس ابھی یہ کہنا تھا کہ اندر سے روشن چہرے والے نکلے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. اب اس کی جب نظر پڑی تو اس نے کہا یہ تو وہی صاحب ہے جنہوں نے میری رات کو ڈاکے میں مدد کی تھی. یعنی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ایک شخص میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا ہے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ضرورت مند ہوگا، تبھی تو چوری کرنے کے لیے آیا، اور آخرت میں اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہو یہ مناسب نہیں ہے، لہذا اسے ہبا کر دینا چاہیے. اور یہ اٹھا کر اکیلا کیسے لے جائے گا؟ تو مدد بھی کی اور مار پیٹ بھی کھائی. اور حضرت کے پیچھے جو ہے آپ کے مریدین اور علماء کی ایک جماعت چل رہی تھی، بس حضرت آگے بڑھ رہے تھے اور ابن سابات پر ایک کیفیت طاری ہوئی، وہ بھی آگے بڑھا اور حضرت کے قدموں میں گر گیا اور دل سے توبہ کر لی. اتنا بڑا ڈاکو کہ جس سے پولیس بھی ڈرتے تھے، اور گھر میں مائیں بھی اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا کرتی تھی کہ ابن سابات آئے گا ابھی، اتنا چرچا تھا اس کا. لیکن صدق دل سے ایک اچھا عمل جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کیا تو اس کو دیکھ کر کے وہ پگھل گیا، اور پگھل کر جھک گیا اور پیر پکڑ کر معافی مانگی. حضرت نے اسے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، مرید ہوا. مرید ہونے کے بعد محنت کی اور حضرت کے خلفاء میں اس کا شمار ہوا. اس لیے گناہ کرنا نہیں ہے، توبہ کی امید پر اور توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے. لیکن نفس اور شیطان کے غلبے سے گناہ ہو جائے تو گناہ سے فارغ ہونے کے بعد جب احساس ہو کہ میں نے بہت برا کیا تو توبہ کرے، چاہے وہ گناہ بار بار ہوتا رہے، بار بار توبہ کرے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ چھڑائے گا، کوئی نہ کوئی سبب بنا کر اس گناہ سے نجات دے گا. رو تنہائی میں اللہ کے سامنے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیاوی معاملے میں، دین کے معاملے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مایوسی جو ہے وہ آتی ہے ایک دو نعمتوں کی محرومی پر بار بار نظر ڈالنے سے. تو آدمی کیا دیکھے؟ پوزیٹو سائڈز کو دیکھے، وجوہ شکر کو دیکھے کہ میری زندگی میں یہ ہے، میری زندگی میں یہ ہے، میری زندگی میں یہ ہے، میری زندگی میں یہ ہے. ایک شخص نے آپ کا دل دکھایا تو دل دکھتا ہے، مگر آپ نے اگر اپنے آپ کو اسی میں بند کر لیا تو بہت ٹھیس پہنچے گی. تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ یہ نالائق نکلا، لیکن الحمدللہ پیار کرنے والے بھی بہت ہیں. اس طرح اپنے آپ کو سمجھائیں. اگر کسی نے قرض لیا اور قرض نہیں دیا اور ٹھیس پہنچی کہ بھئی اس نے ایسا کیا، اب تک تو الحمدللہ ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا، اور اگر اس نے لے لیا چلو اس کو معاف کر کے ہم اپنی آخرت بھی بنا لیتے ہیں. پوزیٹو سوچے آدمی. اور یہ مثال میں نے پہلے بھی دی کہ جب ایک بھوکا شخص گھر میں داخل ہوگا اور اس کی نظر آدھے گلاس، پیاسا شخص آدھے گلاس پانی پر پڑے گی، پیاسا شخص گھر میں داخل ہوا اور آدھے گلاس پانی پر نظر پڑے گی، تو پوزیٹو تھنکنگ والا آدمی پانی کو دیکھے گا اور نیگیٹو تھنکنگ والا آدمی خالی حصے کو دیکھے گا کہ او آدھا ہی ہے، اور وہ دوسرا ماشاء اللہ پانی ہے آدھا گلاس. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو اللہ تعالی شانہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. تو جتنی بے شمار نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں پر نظر رکھے، اور کوئی چیز اللہ نہیں دیتا کسی مصلحت سے، या ले लेता है तो उसको अपने लिए खैर समझे, इस्तिगफार भी करे कि किसी गुनाह की वजह से हो, और ये समझे कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर रहा है या कि मुझे कुछ और देना चाहता है। हजरत उरवा इब्न जुबैर रहिमहुल्लाह तआला की बात रह गई कि वो उनका पैर जो है वो काट दिया गया। जब उनका पैर काट दिया गया तो वो अल्लाह की बारगाह में गोया हुए कि अल्लाह तूने मुझे चार उज्व दिए थे, दो हाथ और दो पैर, चार उज्व दिए थे रोजमर्रा के कामकाज को निपटाने के लिए, तेरा कितना कर्म है कि तूने दिए थे, तू चाहता तो चारों को ले लेता, तुझे हक था, लेकिन तुझे एक ही लिया और तीन मेरे पास रहने दिए। और इत्तेफाक से उसी अरसे में, ये ऑपरेशन के आगे पीछे उसी दिन या एक दिन पहले, उनके एक बेटे का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, एक हादसे में घोड़े ने लात मारी जिसके नतीजे में उनका इंतकाल हो गया। तो उसके लिए भी कहा गया, अल्लाह आपने मुझे चार बेटे दिए थे, आप चारों को ले लेते, आपकी चीज थी, लेकिन कितना कर्म है कि आपने सिर्फ एक लिया और तीन मेरे पास, आपने अपने पास एक बुला लिया और तीन मेरे पास रहने दिए। तो बस इसी पे बात को खत्म करता हूं। छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर मायूस हो जाना, गमगीन हो जाना, एंग्जाइटी में मुब्तला हो जाना, ये ठीक नहीं है। और कभी कभी जो है बीवी पर शोहर जुल्म करता है, कभी शोहर पर बीवी जुल्म करती है, कभी कोई पड़ोसी जुल्म कर रहा है, कभी इन लोग जो है वो जुल्म कर रहे होते हैं, कभी बहू जो है वो सास को सताती है, कभी भाई भाई से ताल्लुक नहीं रखता, होता है ऐसा और हमें दुख पहुंचता है। तो ऐसे मौके पर दिल को समझाने का कि भाई प्रॉब्लम इधर नहीं, प्रॉब्लम तो उधर है, प्रॉब्लम उधर है तो फिक्र तो उसे होनी चाहिए, एंग्जाइटी तो उसे होनी चाहिए, तकलीफ में तो उसे मुब्तला रहना चाहिए। वो आजादी के साथ घूम फिर रहा है और मैं यहां गम लेकर के बैठा हुआ हूं। और उनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला शानहू उनको तौफीक अता फरमाए। तो शुक्र अदा करें, मौसलाधार बारिश की तरह अल्लाह ताला शानहू की नेमतें बरस रही हैं। और एक और बात भी बीच में भूल गया कि कोरोना कोरोना तो लोग बहुत रो रहे हैं, दुनियावी मामलात में बहुत रोना रो रहे हैं, दीन के मामलात में बिल्कुल नहीं। कोरोना अगर किसी को लग गया तो क्या होगा, वो जान ले लेगा, ज्यादा से ज्यादा ही होगा ना, जान ले लेगा, इससे आगे तो कुछ नहीं है ना। और अगर ईमान सलामत है और आमाल सलामत है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी कोई मुसीबत नहीं। इसलिए कि अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत ये होगी कि मौत वाके होगी, मौत वाके होगी तो आखिरत में शहादत का मर्तबा मिलेगा। हाँ, डरे वो जिसकी जिसके पास ईमान नहीं, डरे वो जिसके पास ईमान है मगर फरमा बरदारी नहीं, गुनाहों वाली जिंदगी गुजार रहा है, वो डरे, उसे डरना चाहिए कोरोना से भी कि अगर इस हालत में कोरोना ने मुझे पकड़ लिया तो आखिरत में मेरा क्या होगा, वो तो डरे। लेकिन ईमान है, आमाल सालेहा है, ऐसे शख्स को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को अल्लाह बचाते हैं और अगर अल्लाह मुब्तला करते हैं तो गुनाहों को माफ करके रफे दराजात देते हैं, और अगर जान ले लेते हैं तो शहादत का मकाम अता फरमाते हैं। तो ये तो कोरोना वायरस का मामला है, लेकिन हसद है हमारे दिलों के अंदर, इस कोरोना का क्या करोगे। हसद, हसद जो आखिरत की जिंदगी को बर्बाद करने वाली रूहानी बीमारी है, कीना आखिरत की जिंदगी को बर्बाद करने वाली बीमारी, तकब्बुर आखिरत की बीमारी को, आखिरत की जिंदगी को बर्बाद करने वाली बीमारी। कोरोना से ज्यादा यह होगा कि इंसान शहादत के साथ आखिरत में चला जाएगा, बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। और अगर बीमार हुआ, तकलीफ हुई, गुनाह मुआफ होंगे, दर्जे बुलंद होंगे, रुजू इल्लाह नसीब होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह आफियत के साथ हमें रुजू इल्लाह की तौफीक दे, अल्लाह ऐसे हालात हम पर न लाए। आफियत हमें मांगनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें सिखाया है। अल्लाह बंदों से अब्दियत चाहता है, अल्लाह ने हमें अब्द बनाया है तो अल्लाह हमसे अब्दियत चाहता है, अब्दियत, अब्दियत चाहता है। हजरत मौलाना याकूब ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ بھئی لوگ جنات کو تابع کرتے ہیں. آج کل جو عامل ہوتے ہیں لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جن ہے, میرے پاس جن ہے, اور بعضوں کے پاس ایک جن ہے, بعضوں کے پاس پورا خاندان تابع ہوتا ہے, اور بعضوں کے پاس تو جن بادشاہ تابع ہوتا ہے, تو پورا لشکر بھی ہوتا ہے جن کا. یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے خود میرے سامنے کہا کہ میرے پاس تو ایک پورا لشکر ہے ہزاروں کا, ہزاروں کا لشکر ہے. تو مولانا حکم نانوجی رحمۃ اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے دنیا میں خدا بننے کے لیے نہیں بھیجا ہے, بندہ بننے کے لیے بھیجا ہے, بندہ بننے کے لیے بھیجا ہے. جن جن تابع کرنا کمال کی بات نہیں, اللہ کی بندگی کرنا کمال کی بات ہے. اللہ کا بندہ ہو جانا, اللہ کے سامنے جھک جانا, اور بندگی اتنی پیدا ہو جائے کہ وہ دوسرے بندوں کے سامنے بھی چھوٹا بن کر کے رہے, کمال کی بات تو یہ ہے. اور لوگ بھی ہیں کہ یہ انسین جو ہے بہت جلدی ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. قبر کے بارے میں لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ قبر کی زندگی, فرشتوں کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے کہ فرشتے ہیں یا نہیں, ایتھیس کی دنیا میں چل رہے ہیں, لیکن گھر میں کوئی مصیبت آئی اور کسی نے کہہ دیا کہ جن جن, تو فوراً یقین کر لیا. اللہ بھی بھروسہ رکھو, جن کوئی خدا تھوڑا ہے, جن بھی اللہ کی مخلوق ہے, جن بھی اللہ کی مخلوق اور انسان بھی اللہ کی مخلوق. دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, جن سے افضل ہے وہ. تو جو افضل ہے وہ مفضول سے ڈرا کرتا ہے یا ڈراتا ہے؟ استاد شاگرد سے ڈرتا ہے یا شاگرد استاد سے ڈرتا ہے؟ مرید پیر سے ڈرتا ہے یا پیر مرید سے ڈرتا ہے؟ باپ اولاد سے ڈرے یا اولاد باپ سے ڈرے؟ بادشاہ رعیت سے ڈرے یا رعیت بادشاہ سے ڈرے؟ اشرف المخلوقات. لیکن جو کہ اللہ جل جلالہ عام والوں سے تعلق ہم نہیں پیدا کرتے, تعلق نہیں جوڑتے, اشرف المخلوقات حقیقی معنی میں بنتے نہیں, تو پھر ہر چیز کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے, یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ ہم آخرت بنائیں, آخرت دنیا نہیں. تو اگر یہ ایک ایک بیماری ایسی ہے, حسد, کینہ, تکبر, بے صبری, ناشکری, بغض, بخل, یہ دلوں کی بیماریاں, ایک ایک بیماری ایسی جس سے ہماری پوری آخرت برباد ہو جائے گی. دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس سے ہماری پوری دنیا برباد ہو جائے, نہ بس موت واقع ہو جائے گی, موت واقع ہو جائے گی تو سیدھا جنت. اگر ایمان اور عمل صالح ہے, ایمان اور عمل صالح ہے تو پھر کسی چیز سے ڈرنے کا نہیں, کسی چیز سے, کسی حالت سے ڈرنے کا نہیں. اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اس کا نگہبان ہے, چاروں طرف سے اللہ اس کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے, صحیح فیصلے کرتا ہے, بہتر فیصلے کرتا ہے. ایک مومن جو ہے اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے تو بھی اس کے لیے اچھا ہے, اور زندگی اگر مختصر ہوتی ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں چلے گئے, علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں چلے گئے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر میں چلے گئے. ایسے بہت علماء ہیں جو چھوٹی عمر میں چلے گئے, بہت صحابہ ہیں جو چھوٹی عمر میں چلے گئے. مالداری ہے تو بھی اچھا, اور فقر ہے تو بھی اچھا, عزت ہے تو بھی اچھا, ذلت کے نقشے بھی اس کے لیے اچھے. ذلت کے نقشوں میں بھی اللہ پتہ نہیں اسے کیا کیا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے, لیکن اللہ کے یہاں اس کا کتنا مقام بلند ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی کو بہت ستایا گیا, ان کے زمانے کے, ان کے علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے ان پر زندیق ہونے کا فتویٰ دیا, کفر کا فتویٰ لگایا, پتہ نہیں کیا کیا ان پر. تو جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے میں ذلت کی زندگی گزاری, آخری انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, کفن پہنانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے تھے تو چار آدمیوں کو توفیق ہو گئی, تو چار آدمیوں نے ان کو غسل دیا, چار آدمیوں نے ان کو کفن پہنایا, और फिर उठा करके उनको दफन करने के लिए जनाजा ले जा रहे थे तो पूरी बस्ती के लोग जो हैं वो तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए कि ये ऐसा मुलहिद और ऐसा जिंदगी का आदमी था कि इन चारों पर किसी वक्त अल्लाह की तरफ से अजाब उतरेगा। इस तमाशे को देखने के लिए सब खड़े थे, डरे हुए, सहमे हुए। तो देखो जिंदगी कैसी थी, लेकिन मरने के बाद अल्लाह ने फिर डंका बजाया उनकी इज्जत का। बस वो जामे मस्जिद के पास जब जनाजा पहुंचा है तो नमाज का वक्त हो गया तो मुअज्जिन ने अजान के लिए निदा देना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जनाजा जा रहा है, अजान हो रही है और पूरा मजमा जो है चारों तरफ से देख रहा है। और जब मुअज्जिन ने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो कफन में से हजरत ने हाथ निकाल करके अपना हाथ ऊंचा किया कि भाई तुम पूरी जिंदगी कहते रहे कि मैं मुल्हिद हूं, मैं काफिर हूं, मैं जिंदीक हूं, चलो ये मरने की बात तुमको बता के जा रहा हूं कि मैं ईमान की सलामती के साथ गया। तो आखिरी अय्याम जिल्लत के गुजरे और अल्लाह ताला शानहु ने फिर ऐसी मौत अता फरमाई और ऐसा आखिरी ऐसी करामत दिखलाई लोगों को, सब रोने धोने लगे और अपने किए हुए पर पछताए और बहुत तौबा की और सब के सब वो जनाजे में शरीक हो गए। तो एक मुसलमान जो है उसके लिए बशर्ते कि ईमान हो और अच्छे आमाल हो, फिर वो किसी चीज से डरता नहीं है। रही बात ये कि ये सारे जो एहतियात बरतने हैं, एहतियात तो एहतियात इसलिए बरतने हैं कि एक मोमिन जो है वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। तो अल्लाह ने हमें कहा हुआ है कि एहतियात बरतो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात बरतने के लिए कहा है, फिर मिनल मज़ूम कमा तो फिर मिनल असद, जुजामी से इस तरह दूर रहो, भागो जैसे तुम शेर से भागते हो। तो यकीन तो हमारा यही है कि अगर कोई अंडे जैसे बंगलों में भी बैठ जावे और किसी से मुलाकात न करे, लेकिन अगर कोरोना वायरस उसको होने वाला होगा तो जरूर होकर रहेगा, और अगर बाहर कोई घूमेगा फिरेगा भी और उसे कोरोना वायरस नहीं होने वाला होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये अकीदा तो हमारा यही है, लेकिन हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये बता रही है कि एहतियात एहतियात। इसलिए ये लॉकडाउन में जो नरमियां पैदा हो रही है ये मुल्क की कुछ मजबूरियां हैं। एक तरफ जो है वो इकोनॉमी और मईशत का मसला है और दूसरी तरफ इंसानों की सेहत का मसला है और जानों का मसला है। तो हुकूमत को दोनों के दरमियान बैलेंस करना पड़ता है। तो हमें तो दो चीजों के दरमियान बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपनी जान की हिफाजत करनी है, अपने अहलो याल की जान की हिफाजत करनी है। इसलिए बगैर डरे हुए, बगैर खौफ जदा हुए, अल्लाह पे भरोसा करके, अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है उन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला शानहु हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और बेशुमार जो नेमतें हमें मिली हैं उन बेशुमार नेमतों को पहचानने की, समझने की और उन पर अल्लाह का कमा हक्कहु शुक्र अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अब शुक्र का तरीका क्या है, तो शुक्र के जो है वो तीन पहलू है। हो सकता है कि आइंदा हफ्ते की नशिस्त में उसके बारे में कुछ अर्ज करूं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबीही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अलआकिबतु लिलमुत्तकीन व सलातु व सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबीही अजमईन। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مكرم القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا شعرنا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجعل آخرتنا خيرا من الأولى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين.